نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ قاف میں فرمایا کہ تمہاری زبان سے جو ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا ہے، ایک حاضر باز فرشتہ اس کو لکھتا ہے. اور قرآن پاک کی باقی آیتوں کو جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک لفظ، کلمہ نہیں. کلمے میں آپ کو پتہ ہے کہ مثال ہے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کتاب، کاف تا الف با، چار لفظ ہیں نا. میں آپ سے کہتی ہوں بیٹھیے، با ٹا حمزہ ہا یا، یعنی ایک ایک لفظ کے اندر بہت کچھ ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ ما یلفظو، اور یلفظو کے لفظ میں لفظ موجود ہے، لفظ زبان سے نکلنے والا ایک لفظ. الف ایک لفظ ہے، با ایک لفظ ہے، تا ایک لفظ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت قاف میں فرماتے ہیں کہ ما یلفظو، نہیں نکلتا کوئی لفظ، ما یلفظو، نہیں کوئی ایسا لفظ جو ہماری آپ کی زبان سے نکلتا ہے لکھنے والا اس کو فوراً لکھ لیتا ہے. اگر آپ اور میں صرف اتنی ہی بات پہ غور و فکر کریں تو بہت زیادہ فکر لگ جائے گی کہ میری زبان سے کیا نکلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا الم نجعل لہ عینین ولسانم وشفتین، کیا ہم نے تم کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ تو لفظ زبان بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن کہنے کی بات ہے کہ یہی زبان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ایک بندے کو مسلمان بناتی ہے. ہمارا دل کا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، لیکن یہی زبان انسان کے ایمان کو خراب بھی کر دیتی ہے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار علامتیں بتائیں، آپ سب کو زبانی یاد ہوں گی. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اگر آپ ان چار کو گن کے دیکھیں تو پہلی تین کا تعلق زبان سے ہے. جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے، وعدہ خلافی بھی زبان سے ہوتی ہے، اور گالم گلوچ بھی زبان سے ہوتی ہے. پھر امانتوں کی خیانت کی بات آتی ہے. تو حقیقت ہے کہ زبان ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. لقمان، جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، وہ ایک غلام تھے. کیوں ان کا ذکر قرآن میں آیا؟ روایت میں آتا ہے کہ ان کو حکمت دی گئی تھی، بہت زیادہ حکمت والے تھے. تو ان کے نام کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے کہ ان کے مالک نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ جاؤ سب سے بہترین عضو لے کر آؤ، جانور کا یا جس کا بھی بہترین عضو لے کر آؤ. کچھ لے آئے، دوبارہ کہا جاؤ بدترین لے کر آؤ، پھر بھی کچھ لے آئے. اور دونوں دفعہ وہ کیا لے کر آئے؟ زبان لے کر آئے. کہنے والے نے کہا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ اگر اس کا بہترین استعمال کرو گے تو یہ سب سے اچھی ہے، اور اگر اس کا استعمال برا ہو جائے تو یہ بدترین ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھی بھلا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی سب سے اچھا وہ شخص جو اللہ کی طرف بلائے. تو اللہ کی طرف بلانا کیسے ہوگا؟ زبان سے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن براہ راست تو ہم زبان سے ہی کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ زبان ہمارے لیے بڑی اہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترغیب اور ترغیب میں، آپ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی. یعنی دل اس کا گھر میں ہی لگا رہتا ہے، ہر وقت جوتا پکڑ کر اور ہاتھ میں بیگ لے کے باہر جانے کے شوق میں نہیں ہوتا. اور تیسری بات ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ رویا. کیا کام ہے خوشبختی کے؟ توبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا بہت گہرا سایہ ہوگا. اس کی خوشخبریاں دی گئیں کہ جس نے ملک لسانہ ہو. اپنے اوپر لے کر سوچئے، میں اپنے اوپر لیتی ہوں، کیا میں اپنی زبان کی مالک ہوں؟ देखिए, मालिक कौन होता है? चीज़ को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। किराएदार भी घर में रहता है, लेकिन मालिक मकान उसको निकाल सकता है, राइट? पैसे दे के आप कोई भी चीज़ ले आते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपसे वापस लेना चाहे ले सकता है। जब कोई चीज़ आपकी मलकियत में आ जाती है ना, फिर पूरा आपका इख्तियार है। अब इस जुमले पे ज़रा सा गौर करते हैं मैं और आप। क्या मैं अपनी ज़ुबान की मालिक हूँ? दूसरे लफ्ज़ों में, क्या मेरी ज़ुबान मेरे काबू में है? अक्सर लोगों को मैंने सोचना है, वो मुंह से निकल गई थी, वो बेखबरी में बोल दिया, पता ही नहीं चला, इरादा नहीं था, नीयत नहीं थी, ये था और वो था। इस तरीके से हम बाज़ औक़ात ये बातें करते हैं कि हम अपने आप को बेबस करार दे देते हैं उन चीज़ों के आगे कि जिसको हमारे बस में होना चाहिए था। तो जब मैं और आप ये सब कुछ करते हैं, तो क्या ज़ुबान मेरी मर्ज़ी से चलती है? आपके घर में एक छुरी हो और उसका अगर गलत इस्तेमाल कर दें तो किसी की गर्दन भी काट देगी, और अगर वो छुरी ना हो तो हो सकता है आपके किचन में खाना पकाना शुरू ही ना हो सके। कितनी अहम है छुरी, बात समझ रहे हैं? चीज़ एक ही होती है, इस्तेमाल उसका क्या है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे मुंह में जो ज़ुबान रखी थी वो किस लिए थी? कि हम इस ज़ुबान से अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें। ईमान दिल में हो लेकिन ज़ुबान पे जानबूझ के ना लाएं तो इंसान का ईमान कबूल ही नहीं होता। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान इसलिए दी थी कि हम इससे अल्लाह के नाम को ऊंचा करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। इसी तरह से ज़ुबान के जो फ़वाद हैं, इसके अंदर हमें बेशुमार फ़वाद मिलते हैं, लेकिन आज हमने ज़ुबान को एक तरफ तो जायकों का हरीस बना दिया, टेस्ट कॉन्शियस, आज क्या पकेगा कल क्या पकेगा, दिन का आधा वक्त सिर्फ तबसरों में गुजर जाता है। खाना अच्छा था, खाना अच्छा नहीं था, भुना हुआ था, प्याज की स्मेल थी, लहसुन की स्मेल थी, कल का था, पुराना था। यानी ज़ुबान से हम अच्छे फ़वाद के साथ साथ ख़राब काम ज़्यादा लेने लग गए, और वो तो चले उस जिस्म का एक टुकड़ा था ना टेस्ट के नाम पे, जो उसने अल्लाह ताला ने टेस्ट बड्स रखे हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करती हूँ? क्या मेरी ज़ुबान मेरे काबू में है? क्या इस ज़ुबान को मैं छुरी की तरह सोच के चलाती हूँ? हर जगह खुली छुरी नहीं रखते कि बच्चे हैं वो पकड़ लेंगे तो क्या होगा और वो होगा और ये होगा। क्या मेरी ज़ुबान दूसरों का दिल तो नहीं दुखाती? क्या मेरी ज़ुबान के कट से किसी के आंसू तो नहीं निकल आते? बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक चीज़ ज़ुबान भी है। अल्लाह सुबहाना ताला इसी ज़ुबान का सही इस्तेमाल मुझे आपको सिखाते हैं और फरमाते हैं कि अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखो। और याद रखिए कि जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेगा ना, अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। सिलसिलातु सहीहा बहुत प्यारी किताब है, आप उसको देखें, उसमें हदीस आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने अपने गुस्से को रोका। सोचें, गुस्सा तो आता है, ये तो नहीं हो सकता कि गुस्सा किसी को ना आए। गुस्से का ना आना एक ऐब है। गलत काम करते देखें और गुस्सा नहीं आ रहा और हंस रहे हैं, बेटियां गलत कपड़े पहनती हैं और बाप हंसते ही जा रहे हैं, बीवियां अपनी मर्जी के काम करती हैं और शौहर कुछ गुस्से में नहीं आते, ये तो बुरी बात है। गुस्सा तो आएगा, लेकिन गुस्से को रोकना और उसका सही इस्तेमाल करना, फरमाया अल्लाह ताला इससे अपना अजाब रोक लेगा, और जिसने अपनी ज़ुबान की हिफाजत की अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। कैसे पर्दा डालता है? एक तो आप देखिए कि अल्लाह ताला डालता है ना, क्योंकि एक बंदा जानता है किसी के बारे में। आप सोचिए ज़रा, मैं और आप किसी की कोई बुराई जानते हैं, यानी खुजली हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है कि जल्दी से दूसरे को बताऊँ। ज़रा सा सोचिए अगर मैंने ना बताया तो क्या होगा, और क्या सारी दुनिया में लोगों की बुराइयाँ मुझे पता है जो मैं बता रही हूँ? और अगर यही बात मेरे अंदर होती तो क्या मैं ये चाहती कि वो दूसरों को बताए? अल्लाह के नबी सल्लम ने इतना प्यारा मियार दिया कि इस मुसलमान वो होता है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। क्या समझ आया कि हमें अपनी ज़ुबान को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, हमारे ऐप छुप जाएंगे। और याद रखिएगा ये बात भी कि ऐप छुपते वैसे भी हैं। जब कोई आपको मिले, ख़ासतौर पे नए लोगों में आप जाएं, कोई नई सिस्टर बैठी हैं, बड़ी डिसेंट लगेंगी, बड़ी मुहज्जब, साफ़ सुथरी, अच्छी, पढ़े लिखे घर से लगती हैं। अब जब वो बोलने लगे, बहुत ऊंची बोल रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं, बहुत ही बोल रही हैं, या खामखई आपसे बैठ के कुरेद करना शुरू कर दें, तो आपको बुरा लगेगा। तो करना क्या चाहिए कि खैर के अलावा ज़ुबान को हर चीज़ से रोक लें। ये आपका मेरा तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्योंकि ये ज़ुबान की वो चीज़ें हैं जो मेरे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। हज़रत बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि नबी सल्लम के पास एक देहाती आया। अब देहाती कौन होते हैं? जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बद्दू थे, आज के दौर में आप कह लें कि गांव का कोई शख्स आया। कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए। अब देखिए ज़्यादा बड़ी अकलें होती हैं ना तो बंदा बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करता है, थोड़ी अकल वाला शख्स तो कहने का बस एक अमल बता दें कि मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया कि साथी तूने बात तो मुख्तसर की है लेकिन सवाल बड़ा लंबा चौड़ा, यानी बात तुमने कही तो एक लफ्ज़ की है कि जन्नत में जाने वाला अमल बता दे लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। फरमाया कि तुम अकेले पूरा गुलाम आज़ाद कर दो या गुलाम की आज़ादी में तुम इसकी मदद करो और ज़्यादा दूध देने वाली ऊँटनी और माल का अतिया ऐसे रिश्तेदार को दो जो जालिम हो। सोचिए ज़रा कितने मुश्किल काम है ना, ऐसे रिश्तेदार जो आप पे जुल्म करें और आप उनको तोहफे दें, और अगर तुम में इसकी ताकत ना हो तो भूखे को खाना खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, और अगर ये भी ना कर सको। अब आप देखिए कितने अमल लिखाए ना, कितनी बातें आपने बोली, ये करो वो करो, यानी गुलाम आज़ाद करना कोई आसान काम तो नहीं है, हज़ारों लाखों में होगा। दूध देने वाली ऊँटनी जो आज मेरे ख्याल है कई लाख की होगी वो दो, रिश्तेदार को माल दो जो कि तुम्हें तुम पे जुल्म करता है, भूखों को खिलाए प्यासे को पिलाओ, नेकी का हुक्म दो। इतने अमल करके आपने कहा अगर ये सब ना कर सको तो अपनी ज़ुबान को खैर के अलावा बंद रखो। वल्लाही हमें अपनी ज़ुबानों को बंद रखना चाहिए, फ़ायदे की बात करो वरना खामोश रहो। अल्लाह के नबी की दुआ है रहिमल्लाहु अबदन, अल्लाह उस बंदे पे रहम फरमाए, काला व गनीमा औ सकता व सलीमा। कितने प्यारे अल्फाज हैं आपकी ज़ुबान मुबारक के, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जिसने कोई बात की तो फ़ायदा मंद की और अगर खामोश रहा तो सलामत रहा। कितना बंदा महफूज हो जाता है खामोश रहकर। और याद रखिए जब अल्लाह ताला से बातें करने की आदत होती है ना तो दूसरों से ज़्यादा बोलने का मज़ा ही नहीं आता, लगता मेरी बात समझता ही कोई नहीं है, मैं ऐसे ही इनके साथ अपना सर खपाऊँ। खामोशी भी इबादत बन जाती है। और एक शख्स जब ईमान कबूल कर लेता है ना तो उसके बाद उसके लिए सबसे अहम चीज़ ज़ुबान है। एक सहाबी थे सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हो, कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझे इस्लाम के हवाले से एक ऐसी बात बता दीजिए कि इसके बाद मुझे किसी से कुछ ना पूछना पड़े। ये भी तो खूबी की बात थी ना कि बस हर जगह ना जाऊँ पूछने, अमल तो करना कोई नहीं, सबसे लोग पूछना पसंद करते हैं, कहा बस आपसे पूछ लूँ इसके बाद कुछ ना पूछूँ। आपने फरमाया कि क्या कहो, आमंतु बिल्लाही सुम्मस्तकीम, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया और इस पे जम जाओ साबित कदम रहो। कहा ठीक है, अब ये बता दें कि मैं किस चीज़ से बचूं। तो आपने अपनी ज़ुबान की तरफ इशारा किया, फ़अशारा बियदिही इला लिसानिही, इशारा किया था कि अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करो। तो मेरे आपके जन्नत में या जहन्नम में जाने में ज़ुबान बहुत अहम है। अल्लाह के नबी सल्लम ने इशारा किया था कि जहन्नम में जो अक्सर लोग जाएंगे वो अपनी ज़ुबानों की वजह से जाएंगे। ये हमारी कहावत भी तो है ना कि यही अर्श पे बिठाती है और यही फर्श पे बिठाती है, और ये भी तो कहावत ही ना कि ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी। अच्छी बात करो नहीं तो चुप रहो, बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश के एक वर्डिंग है कि स्पीक व्हेन यू हैव वर्ड्स ब्यूटीफुल देन योर साइलेंस, तब बोलो जब तुम्हारे पास खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज है। तो ये चंद बातें जो ज़ुबान के लिए मेरे आपके फ़ायदे की थी ये रखी हैं, लेकिन आज हम इस ज़ुबान से जो काम किए जाते हैं लिए जाते हैं उसमें से एक ख़ास चीज़ के ऊपर बात करेंगे और वो है तजस्सुस। तजस्सुस क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि ज़ुबान की बातें और कम बोलना ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके ऊपर चले एक वाक्य आपको हल्का सा सुना देती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ज़ुबान के बारे में एक इंसान कितना केयरफुल होता है और उसको कितना केयरफुल होने की ज़रूरत है। वाक्य आता है ये एक असलाफ में कि एक शख्स कहीं से गुजर रहा था तो वहाँ उसको एक सेब नीचे गिरा हुआ पड़ा किसी बाग के पास। उसने सोचा कि ये मालिक को दे दूंगा, उठाया और जाके उसको देने लग गया। जब उसके पास पहुंचा तो कहा कि ये आपके बाग का सेब बाहर गिरा हुआ था तो मैंने सोचा कि ख़राब ना हो जाए, ये आप ले लीजिए। मालिक ने तो उल्टी ही बात कर दी, कहने लगा कि ये आप मुझे तो नहीं देना चाह रहे थे, ये तो आपने चोरी किया था, अब चूंकि मैंने देख लिया तो आप फौरन मेरे हाथ में करने लगे हैं, मैं तो आपको सजा दूंगा। कहा कि मेरी ये नीयत नहीं थी, थोड़ी सी सफाई पेश की होगी। बहरहाल जब वो ना माना, कहने लगे कि फिर चूंकि आप मालिक हैं तो आप मुझे दुनिया में ही सजा दे लें, ऐसा ना हो कि मैं आखिरत में पकड़ा जाऊं। कहा क्या सजा है? वो मालिक कहने लगा कि तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी जो गूंगी भी है, बहरी भी है और चलती फिरती भी नहीं है, यानी हैंडीकैप्ड है। कहने लगा बात तो मुश्किल है लेकिन आखिरत की पकड़ के आगे तो छोटी है। اور حقیقت ہے کہ جن کی نظریں آخرت پہ لگ جاتی ہیں ان کو دنیا کا ہر عمل اچھا یا برا بے معنی لگتا ہے، کیونکہ یہ وقتی ہوتا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ جب وہ تیار ہوا کہا ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ اب اس شخص کا غم کیا ہے کہ میں بات کیسے کروں گا، جو نہ بولتی نہ سنتی نہ کچھ۔ لیکن جب اپنی بیوی کے پاس گیا، سلام کی تو بہت ہی خوبصورت آواز میں جواب آ گیا وعلیکم السلام کا، اور جب دیکھا تو حسین و جمیل لڑکی اور کوئی کسی قسم کا جسمانی نقص نہیں تھا اس میں۔ کہنے لگا کہ حیرت کی بات ہے کہ تمہارے باپ نے جھوٹ کیوں بولا، اگر مجھے ویسے ہی کہتا تو میں تم سے شادی تو ویسے بھی کر سکتا تھا، تو یہ تمہیں انہوں نے گونگا بہرا کیوں کہا؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھا تو قرآن کی ایک آیت تھی کہ وَقَرْ نَفِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ایسی بلا ضرورت باہر نہ پھرو۔ کہتی اس کے بعد میں نے بلا ضرورت کیا، میں نے گھر سے جانا ہی چھوڑ دیا۔ جب میں گھر سے نہیں نکلتی تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے لنگڑی کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہو گیا تجھے، تو چلتی کیوں نہیں ہے۔ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ جو زبان سے نکلے گا اس کو لکھنے والا فرشتہ لکھ لے گا۔ کہنے لگی میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا، جب میں نے بولنا چھوڑ دیا تو میرے گھر والوں نے مجھے گونگی کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح سے ایک عمل، تم نے جب سیب واپس کیا تو میرے باپ کو تمہارے اندر ایمان نظر آیا اور اس کو لگا کہ میرے لیے تم سے بہتر شوہر کوئی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور لہٰذا یاد رکھیے کہ آپ کے میرے لیے دن میں اپنے الفاظ کو گننا ممکن ہو تو ایک ہفتہ گن کے دیکھیے، ابھی بھی صبح سے لے کے اب تک کتنا بولی ہوں، بیکار بولی ہوں کہ ٹھیک بولی ہوں۔ بس دفعہ ہم صرف بولتے ہیں، واللہ ہی صرف بولتے ہیں، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، نہ سننی ہے نہ سنیں گے، نہ ماننی ہے نہ مانتے، لیکن ہم بس بول رہے ہوتے ہیں، عادتاً بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بات اس کی بات، ادھر سے بات ادھر سے بات۔ بہت بڑی بات ہے، حدیثوں پہ حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں جو کہ اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک روایت شیئر کر دیتی ہوں کہ جسم کے اعضاء زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، ابن آدم اٹھتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس آرگنز زبان کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو صبح ہوئی ہے، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کم بولنا، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ظاہر ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے لگی صرف زبان کاٹ کے تو جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی نا، پورے جسم جائے گا نا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم پورا جسم جہنم میں کیسے ڈلواؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی جلنا پڑے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کو ایک موقع پہ حضرت عمر نے دیکھا تو ابو بکر اپنی زبان یوں کھینچ رہے تھے جیسے نوک کو آگے سے پکڑ کے کھینچے، تو عمر بولنے لگے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیے زیادہ باتیں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش گوئی ایسی لچر پن، بےہودہ باتیں، چھچورے مذاق کسی کو کرنا، اور اسی طرح زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نفاق کے ساتھ جنت تو نہیں مل سکتی نا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت سوچ کے بولیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے در میں کھڑے ہوں گے، ہماری زبان کی کھیتیاں کٹ رہی ہوں گی، کئی لوگوں کی تہجدوں کی کھیتیاں، روزوں کی کھیتیاں، صدقہ خیرات کی نیکیاں صرف زبان کی تیزی سے کٹ جائیں گی۔ جب آپ زبان کا موضوع حدیثوں سے پڑھتے ہیں نا، خاص طور پہ بلیف میں، اس کے بعد دل نہیں کرتا کہ ایک لفظ بھی بولو۔ کوئی کہتا نہیں بولتا تو نہیں بولتے، ہمیں نہیں بولتے، لوگ کہتے ہیں یہ مغرور ہیں، یہ کم بولتے ہیں، ان کو باتیں نہیں کرنی آتی۔ بھائی نہیں آتی تو نہیں آتی، بہت زبان چلانا کوئی اچھی بات ہے، اور خاص طور پہ خواتین کی۔ مردوں کو تو بھاؤ تاؤ کرنے ہی پڑتے ہیں باہر کے دنیا کے، لیکن عورتوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو انہی برائیوں میں سے سورت حجرات، جس کا دوسرا نام سورت الاخلاق بھی ہے، کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سورت حجرات کا دوسرا نام سورت الاداب، ادب سکھاتی ہے یہ سورت۔ تو اسی کی آیت نمبر 12 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो। पहली चीज़, इस एक आयत में तरतीब के एतबार से देखें तो बदगुमानियों से बचाया गया है। जन क्या होता है? ऐसी एज्यूम कर लेना, वो है ही ऐसी, जान के नहीं किया होगा, बस बहाने बनाती है और रहने दो, यानी ये टोन यूज़ करते हैं लोग। यानी बदगुमानी क्या है कि आप किसी के मामले में खुद ही घर बैठे कुछ ना कुछ सोच के बैठ जाए। बस ने किसी को टाइम दिया आपने 5 बजे का, 5:15 हो गए, नहीं पहुंची, तो कोई कहते पता नहीं पहुंची नहीं, और रहने दो, वो तो आती लेट है, वो कहीं और चली गई, उसको तो वादा ही नहीं पूरा करना आता। उसको कि ये नहीं सोचते अल्लाह ना करे एक्सीडेंट ना हो गया हो, घर में बच्चा बीमार ना हो, कोई मामला ना बिगड़ चुका हो, वो रास्ता ना भटक गया हो। तो बदगुमानी के हर बात में नेगेटिव सोचना, और आप माइंड ना कीजिएगा, मैं दिल के दर्द के साथ ये बात कहूँगी कि मैंने पाकिस्तान में जब भी आई हूँ सबसे ज़्यादा लोगों को दूसरों से बदगुमान देखा है। आप अपनी मासियों से बदगुमान है, कर लिए छुट्टी, बहाने बनाती हैं, आना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, झूठी हैं, बदगुमान है आप अपनी मासी से, देर से आ जाए तब छुट्टी, और अगर अल्लाह रहम करे कल आपसे 2000 रुपये उधार ले गई थी एडवांस में और आज नहीं आई, भाग गई, और सर पे चढ़ाओ और कर लो, वो कर लो, ये कर लो। यानी बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा लोग बदगुमान होते हैं कि दूसरे की नेकी बर्बाद गुना लाजिम हो जाता है। और अगर आप मासियों को देखें तो वो आपसे बदगुमान होंगी, ये कंजूस हैं, काम बड़ा रखती हैं, बर्तन धोए थे अभी और लेके आ गई, और मुझे इंसान नहीं समझती, पैसे क्या देती है और काम क्या करती है, वो भी बदगुमान है। आप दर्जी के पास जाएं, अल्लाह ना करे आप में से कोई दर्जी के पास जाए, मैं आपको दुआ दूंगी कि आप में से कोई दर्जी के पास ना जाए, क्योंकि मैंने जाते हुए देखा और जो वहाँ खुआरियाँ होती हैं, मैं कहती हूँ कि इतनी डिसरिस्पेक्ट करके, इतनी बेइज्जती कर करा के अगर एक जोड़ा सिल सलाह भी लिया तो क्या उसकी इज्जत होगी। आपका बुटीक होगा तो आप औरतों से डील करती होंगी ना। यकीन करें कि आज हर बंदा दूसरे से बदगुमान है। आपने भी डेट गलत बताई उसको शादी की, और उसने भी पहले से सोच लिया ये बाजी वैसे ही बोलती है, 2 दिन बाद की होगी। आपने फ्लाइट की डेट 2-4 दिन पहले की बता दी, उसको भी पता है बाजी नहीं, और उसने भी कह दी बिजली कोई नहीं थी, काम 10 से ले लेंगे, काम कर नहीं सकते, सबकी कहेंगे वो बाजी वो ये हो गया था, वो हो गया था। रिक्शे वाला बदगुमान है। आप देखिए, इवन मैं कहती हूँ कि दफ्तरों में चले जाएं, अगर आप किसी सरकारी काम के सिलसिले में काउंटर्स पे बैठे लोग आपसे बदगुमान हैं और आप उनसे बदगुमान हैं, लोग कहते हैं ये हराम खाते हैं, ये काम चोर हैं, ये ऐसे ही बैठ के, ये तो ऐसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। लोग दूसरों के बारे में, और जो वहाँ बैठे हैं वो आपसे ऐसे लगता है कि खाने को पड़ेंगे, आप शायद उनसे कोई कर्ज लेने आ गए। यानी सॉरी टू से दैट, बट इखलाकी तौर पर आज हमारा मुल्क बहुत पीछे है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी पाकिस्तान का मुकद्दर संवरेगा, जब पाकिस्तान में खैर और आफियत आएगी ना, तो उससे पहले किरदार साजी होगी। आज हमारी आवाम को असलहे और हथियारों और F-16 और तोपों से ज़्यादा किरदार चाहिए, अखलाक चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। एक मुसलमान सोसाइटी स्माइली, मुस्कुराती हुई, दूसरे का दुख दर्द बांटती हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होते हैं, अगर एक हिस्से में दर्द है तो दूसरा हिस्सा भी उसके ऊपर तकलीफ़ महसूस करता है। ऐसा दर्द दिल में आए कि दूसरे के लिए तड़प के रह जाएं आप। और यकीन करें कि नॉन मुस्लिम्स ने ये चीज़ें हमसे ज़्यादा अपनाई हुई हैं। मुश्किल पड़ जाती है, आप अपना कोई गम उनको बता के तो देखें, वो तो आपके घर तक आएंगे आपकी मदद करने। हमारे यहाँ झूठ सच को मिलाकर क्या कुछ नहीं किया जाता, और नुकसान क्या होता है कि हम अपने आप को फिर मुसलमान समझते हुए मजीद जन्नत के तलबगार समझे होते हैं। तो बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ है। और बदगुमानियाँ क्या होती हैं, साथ ही तजस्सुस के इसको भी ले लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे सबके लिए फ़ायदा होगा। और वो क्या है कि आप देखिए कि कुछ रिश्तों में तो पक्की बदगुमानी है, पक्की पक्की बदगुमानियाँ होंगी हमारे दिनों में। हाँ जी, सोई हुई है, पड़ी है आपने कमरे में, अभी ये होगा, यानी कुछ रिश्ते भी बदगुमान हैं एक दूसरे से। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कई ऐसे ताल्लुकात हैं जिसमें बदगुमानी है, तो इससे बचने की कोशिश करें। आप और मैं, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आप माने ही ना कि कोई मेरे बारे में बुरा कहेगा। ये पहला नुक्ता है। किसी ने शैतान से कहा था कि तुम झगड़े कैसे करवाते हो, लड़ाइयाँ कैसे कराते हो? आप देखते सगी बहन दूसरी बहन से नहीं मिलती, भाई भाई का दुश्मन दिखता है, भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा है लेकिन कैसा उसमें कमी है, उसकी वजह यह बदगुमानी। आप पहले से ज्यूम करते हैं, मेरे भाई हैं वो मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, अब वो बेचारे उससे ज्यादा भी कर लें लेकिन आपकी उम्मीदें ज्यादा से ज्यादा होंगी। अच्छा भाभी ने मना कर दिया होगा, अच्छा बहू ने कह दिया होगा, यानी क्या है खिचड़ियां नहीं पकी हुई। इतनी सियासत तो मेरे लिए हमारे मुल्कों के फोरम्स में नहीं होती जितनी हमारी घरेलू सियासत है। इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करें, यहाँ बैठ के कहें मुझे कोई शख्स बुरा नहीं लगता, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे मुखलस हैं, कोई मेरे बारे में सोच नहीं सकता। और आपको पता है कि हमेशा अच्छा सोचें, बस आप देखिए कि यहाँ आपने किसी को बुलाया था और वो अभी तक नहीं पहुँची, सोच पड़ जाए कि ये क्यों नहीं आई, खैरियत है, परेशान ना हो, कोई मसला ना हो जाए, ना कि आप ये सोचने लग जाएं कि दूसरी तरफ है। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, माजी के इमाम थे, वो कहते हैं कि तुम अपने भाई के बारे में जब कोई बात सोचते हो, मसलन चले यही मिसाल है कि आपने किसी को 5 बजे बुलाया और वो अभी तक नहीं आया, कहते हैं तुम उसकी रीजनिंग करो, तावीलात करो, मसलन गाड़ी ख़राब होगी होगी एक वजह, मेहमान आगे होंगे दूसरी वजह, बच्चा बीमार हो गया होगा तीसरी वजह, 4-5 सोच लें, आप खुद ही सोच लें। कहते तुम सोचते जाओ सोचते जाओ, एक वजह दूसरी वजह, 99 यानी 99 वजूहात सोच लो अपने दिल में, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, और उसके बाद फिर खुद से कहो, गौर से सुनिएगा, 99 रीजंस में क्या कुछ नहीं आ गया होगा, फिर उसके बाद खुद से कहो मेरा ख्याल है कि जो उसकी मजबूरी इस वक्त बनी हुई है ना, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब आप देखिए कि बात हमारी पूरी हुई इस बात पे कि बदगुमानी नहीं करनी। मैं आपको 3 सेकंड दूं, अपने दिलों को साफ करें, बहुएं सासों से, बहनें भाइयों से, भाई बहनों से, जो जिससे, मासी से, यहां बैठ के बोलें मुझे आज तक दुनिया में किसी इंसान में कोई खराबी नहीं दिखी। अच्छा सोचें, शौहर का तो मैंने नाम ही नहीं बेचारे का लिया, बीवियां बेचारी, यानी खून के रिश्ते छोड़िए, प्यार के रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते बदगुमानियों की वजह से बेमजा होते हैं। ये पहला एक, जैसे वो दूध में फुटकी दही की डालते हैं तो फिर सारे दही जम जाता है, इस तरह बदगुमानी की फुटकी पड़ेगी। अल्लाह ने कहा क्यों ना करो बदगुमानी, क्योंकि इन नबाद जन्य इसमन, बस गुमान गुना होते हैं, अगले का तो कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा, गुनाहगार आप होंगे।